ये आकाशवाणी है। अब आप जागृति शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर बैठक में भाग लेने के लिए आज इटली के अपूलिया के लिए रवाना हो गए हैं। रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार भारत इटली रणनीतिक भागीदारी और भारत प्रशांत तथा भूमध्य सागरीय क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि वे इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के आमंत्रण पर G7 बैठक में भाग लेने के लिए इटली जा रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि बैठक में विचार विमर्श के दौरान उनका ध्यान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्य सागर क्षेत्र पर होगा। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट में कृपांक प्राप्त करने वाले 1,563 अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा 23 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने आज कहा कि इस बारे में शीघ्र ही सूचना जारी की जाएगी और इन परीक्षार्थियों को ईमेल के माध्यम से सूचना प्रदान की जाएगी। एजेंसी ने कहा कि दोबारा परीक्षा का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी के बाद लिया गया है। इस बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने की बात से इनकार किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि नीट परीक्षा में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। नई दिल्ली में आज श्री प्रधान ने नीट मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि परीक्षा में गड़बड़ी पैदा करने के लिए दोषी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। कुवैत में आग दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। कुवैत के दक्षिणी मनगाफ क्षेत्र में स्थित भवन में आग लगी थी जिसमें 49 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हुए थे। इमारत में विदेशी कामगार रह रहे थे। इस बीच विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह आज मनगाफ पहुंच चुके हैं जहां वे आग दुर्घटना में घायलों को दी जा रही सहायता का निरीक्षण करेंगे। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य दुर्घटना में मरने वाले लोगों के पार्थिव शरीर को स्वदेश लाने के बारे में स्थानीय अधिकारियों से तालमेल बनाना है। कुवैत पहुंचने के बाद श्री कीर्तिवर्धन सिंह कल की आग दुर्घटना में घायल व्यक्तियों से मुलाकात करने के लिए तुरंत जाबिर अस्पताल पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार ने अगले 5 वर्ष में देश के रक्षा निर्यात को बढ़ाकर 5,000 करोड़ रुपए तक करने का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में आज रक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अब तक 21,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा साजो सामान का निर्यात कर चुका है। उन्होंने कहा कि देश की रक्षा और सुरक्षा बलों का कल्याण सरकार की प्राथमिकता है। श्री सिंह ने मंत्रालय की पहले 100 दिनों की कार्य योजना पर एक समीक्षा बैठक की। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में भारतीय ओलंपिक संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री मांडविया ने पेरिस ओलंपिक 2024 से संबंधित तैयारियों की जानकारी ली। बैठक के बाद भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने कहा कि सभी तैयारियां हो चुकी हैं और खिलाड़ियों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर सभी सुविधाएं दी गई हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने आज नई दिल्ली में पदभार ग्रहण किया। श्री नायडू ने कहा कि उड़ानों का नियमित संचालन उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और कीमतों को कम करना तथा इसे और अधिक किफायती बनाना भी उनकी प्राथमिकता है। भारत ने 7 जून को चीन और पाकिस्तान के हालिया संयुक्त बयान में जम्मू कश्मीर के संदर्भ को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं और हमेशा रहेंगे। उन्होंने कहा कि किसी अन्य देश को इस मुद्दे पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। वित्त वर्ष 2024-25 का केंद्रीय बजट पेश करने की तैयारी शुरू हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल वित्त मंत्री का कार्यभार संभालने के बाद बजट के बारे में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 204 अंक के उछाल के साथ 76,811 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी भी 76 अंक ऊपर 23,399 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।